वो जानता था जय इस वक्त विक्रांत और जेसिका के पास था और ये बात उसे हर पल खलती थी। आर्यन ने कप उठाया, एक घूंट लिया और सोचते हुए बोला, केस तो मैं अभी भी कोर्ट में डाल सकता हूँ। फिर उसने खुद ही सिर हिलाया, लेकिन तुम जानते हो मेरे ऊपर जो ड्रग वाला केस है वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, पहले उसे क्लियर होने दो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, अगर हम अभी कोर्ट गए तो खतरा है। सानवी ने उसकी बात बीच में ही पूरी कर दी, हो सकता है कस्टडी ना मिले और अगर ऐसा हुआ तो जय और दूर चला जाएगा। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। जय खिलौने से खेलते खेलते हंसा, जैसे उसे किसी भी चिंता से कोई मतलब ना हो। वही हंसी दोनों के दिल में और चुप गई। आर्यन ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने धीरे से कहा, हम इंतजार करेंगे। आर्यन ने बात का रुख बदला, जैसे माहौल को हल्का करना चाहती हो। और हाँ, एक दो शेफ आ रहे हैं, तुम्हें उनके इंटरव्यू लेने होंगे खाना बनाने के लिए। आर्यन ने चाय का कप नीचे रखा। सानवी मुस्कुराई, मैं हूं ना खाना बनाने के लिए। नहीं, तुम अपने रेस्टोरेंट में हिसाब किताब संभालो, घर पर वैसे ही काफी काम रहता है और आगे भी रहेगा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, तुम बहुत कुछ अपने ऊपर ले लेती हो सानवी। उसने कंधे उचका दिए। किसी को तो संभालना पड़ेगा, उसने हल्के अंदाज में कहा, फिर जय की तरफ देखते हुए जोड़ा, खासकर इसे। जय ने अचानक उनकी तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, मैं यहीं रहूंगा ना। सानवी और आर्यन दोनों एक साथ चुप हो गए। सानवी ने पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ, उसने नरम आवाज में कहा, तुम यहीं रहोगे। आर्यन ने उसे देखते हुए मन ही मन सोचा, ये लड़ाई सिर्फ कस्टडी की नहीं थी, ये जय के बचपन, उसकी सुरक्षा और उसके भरोसे की थी। और उस सुबह चाय की हल्की सी गर्माहट के बीच उन्होंने तय कर लिया, जल्दी नहीं करेंगे मगर हारेंगे भी नहीं। जय खेलते खेलते अचानक आर्यन के पास आ गया। उसके हाथ में खिलौना कार थी, जिसे वो वहीं छोड़कर सीधा उसके सामने खड़ा हो गया। मामू, उसने मासूम सी आवाज में कहा। आर्यन ने अखबार से नजर हटाई। क्या हुआ चैंप? जय ने बिना देर किए अपना मुंह खोल दिया और सामने आकर खड़ा हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, वो थोड़ा परेशान सा बोला, मेरा जो दांत टूट गया है ना, वो कब आएगा? देखो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने उंगली से खाली जगह दिखाई, जैसे उस दांत के ना होने से उसकी पूरी दुनिया बिगड़ गई हो। आर्यन हंस पड़ा। उसने प्यार से जय के सिर पर हाथ रखा। अरे, जल्दी आ जाएगा, ऐसे ही सबके दांत आते हैं, अभी तुम बड़े हो रहे हो इसीलिए पुराना गया है। जय ने शक भरी नजर से उसे देखा। पक्का? पक्का, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी सानवी किचन से दूध का कप लेकर आई। किसकी क्लास चल रही है? उसने हल्के मजाक में पूछा। जय तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। सानवी दीदी, मेरा दांत टूट गया है, उसने फिर से वही शिकायत दोहराई। सानवी झुककर उसके सामने आई और प्यार से बोली, अगर जय दूध पिएगा तो दांत जल्दी आएगा। जय की आंखें फैल गईं। दूध? हाँ, सानवी ने मुस्कुराकर कहा, खूब सारे फ्रूट्स खाने होंगे, रोज दूध पीना होगा, इससे दांत मजबूत होते हैं। उसने कप जय के हाथ में थमा दिया। पहले दूध खत्म करो। जय ने कप को ऐसे देखा जैसे वो कोई दवा हो। पूरा? पूरा, सानवी ने सख्ती से कहा, मगर आंखों में प्यार था। जय ने एक घूंट लिया, फिर दूसरा, बीच बीच में मुंह बनाता रहा मगर कप खाली कर ही दिया। अब आएगा? उसने तुरंत पूछा। आर्यन और सानवी दोनों हंस पड़े। थोड़ा टाइम लगेगा, आर्यन ने कहा, पर आएगा जरूर। जय ने राहत की सांस ली और फिर अचानक बोला, जब आएगा ना तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। सानवी ने उसके गाल पर हल्का सा चुम्मा दिया। डील। जय फिर से खेलने चला गया और पीछे रह गए आर्यन और सानवी। ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका था, आर्यन और सानवी भी अपना नाश्ता कर चुके थे। तभी राम हाल के अंदर आया। अब उसे जय को वापस विक्रांत के घर छोड़ने जाना था। जय भी ये बात अच्छी तरह समझता था। वही सवाल जो वो अक्सर करता था आज फिर उसकी आंखों में आ गया। मैं आपके पास पक्का रहने पाऊंगा ना? उसने दोनों की तरफ देखा, फिर धीरे से आर्यन की गोद से उतर गया। राम के साथ जाने के लिए वो आगे बढ़ गया। सानवी भी उसके साथ बाहर चली गई। अब हाल में सिर्फ आर्यन और सानवी रह गए थे। सानवी के चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, तुम्हें रेस्टोरेंट जाना है ना, मैं छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने काम के लिए तैयार हो चुके थे। आर्यन सानवी को रेस्टोरेंट में छोड़कर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। उसी वक्त विक्रांत अपने घर के ऑफिस में वकील के साथ मीटिंग कर रहा था। सामने वकील बैठा था और बगल में उसका असिस्टेंट भी मौजूद था। बातचीत का विषय सिर्फ एक था, जय की कस्टडी। विक्रांत के सवाल पर वकील ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, अब आपकी और आर्यन की पोजीशन एक जैसी है, वो भी शादीशुदा है और आप भी, ऐसे में कोर्ट कस्टडी उसे भी दे सकता है। ठीक है, विक्रांत ने संक्षेप में कहा।
कुछ ही देर बाद वकील अपनी बात पूरी करके चला गया। उसके जाते ही कमरे में सिर्फ विक्रांत और उसका असिस्टेंट जीवन रह गए। जीवन ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन के खिलाफ ड्रग केस हमें और स्ट्रॉन्ग करना होगा। विक्रांत की आंखों में एक चालाक सी चमक आ गई। हाँ, उसने कहा, क्योंकि जितना ज्यादा आर्यन फंसेगा उतनी ही मजबूती से जय की स्टडी हमारे पास रहेगी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी आने वाले तूफान का इशारा थी। आर्यन अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। सामने फाइलें खुली थीं, लेकिन उसकी नज़र किसी एक पन्ने पर टिक ही नहीं पा रही थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। शिव मेहता उसे यूं चुप देखकर मुस्कुराया और हल्के अंदाज में बोला, क्या बात है, आज इतने परेशान लग रहे हो, भाभी से लड़ाई हो गई क्या? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, फिर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं शिव, बात वो नहीं है, मैं जया को लेकर फिक्रमंद हूँ। कोर्ट जाने से पहले मुझे विक्रांत के खिलाफ ठोस सच चाहिए, ऐसा कुछ जिससे कस्टडी का मामला उसी वक्त मजबूत हो जाए और जय की स्टडी मुझे मिल सके। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं कोई गलत चाल नहीं चलना चाहता, जय मेरी बहन का बेटा है, मेरी जिंदगी है। शिव ने गंभीर होकर कहा, फिक्र मत करो आर्यन, जब नीयत साफ होती है तो रास्ता भी निकल आता है, सब ठीक होगा। उधर कहानी का दूसरा सिरा कहीं और पक रहा था, विक्रांत के अंधेरे खेल के बीच। जमाल अब लगभग विक्रांत के आदमियों में शामिल हो चुका था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह भरोसे के लायक नहीं माना गया था। विक्रांत को नए आदमी चाहिए थे, लेकिन वो हर किसी को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता था। हर एक का टेस्ट होता था और ये लास्ट टेस्ट था। विक्रांत अपने ऑफिस में बैठा था, साथ में जीवन भी मौजूद था। जमाल को बुलाया गया। विक्रांत ने टेबल पर रखा एक काला सूटकेस उठाया और जमाल की तरफ बढ़ा दिया। उसकी आंखों में सख्ती थी। इस सूटकेस को ध्यान से देखो, उसने कहा, इसके अंदर समझ लो मेरी जिंदगी है, अगर ये किसी गलत हाथ में चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जीवन ने एड्रेस लिखी एक पर्ची आगे बढ़ाई, तुम्हें इसे इसी पते पर पहुंचाना है, किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं। जमाल ने बिना सवाल किए सूटकेस पकड़ा। काम हो जाएगा, उसने बस इतना कहा। शाम होते होते जमाल जी रेस्टोरेंट पहुंचा। रेस्टोरेंट में हलचल थी, अलग अलग टेबलों पर कई लोग बैठे थे। कोई हंस रहा था, कोई चुपचाप फोन देख रहा था, कोई बिजनेस की बातें कर रहा था। विक्रांत ने जिस पहचान का जिक्र किया था, जमाल ने हर चेहरे में वही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। उसने सूटकेस अपने पास रखा और एक कोने की टेबल पर बैठ गया। समय बीतता गया, चाय खत्म हो गई, दूसरी चाय आ गई। रेस्टोरेंट की भीड़ बदली, कुछ लोग गए, कुछ नए आ गए, लेकिन वो आदमी नहीं आया। जमाल के दिमाग में कई ख्याल आए, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। काफी देर बाद दरवाजा खुला, विक्रांत और जीवन अंदर आए। जमाल ने उन्हें देखा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। विक्रांत उसकी टेबल के पास आकर रुका और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। जमाल चौंका नहीं। जीवन बोला, तुम पास हो गए। विक्रांत ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा,
तुम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पुलिस के पास जा सकते थे, हमारे दुश्मनों के पास जा सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब तुम वफादार हो।